उपस्थित सुधी सज्जन वृंद, आज इस शुभ संध्या में आयोजित इस धर्म सभा में आने के लिए आप लोग जो कष्ट उठाए, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बहुत आभारी हूँ जो आप लोग इस सुंदर व्यवस्था की भगवान के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। तो प्रभु जी ने मेरे को बोले जो आप आनंद जीवन में कैसा आनंद प्राप्त होगा उसी के बारे में कुछ बताइए। ये तो बहुत एक जरूरी प्रश्न होता है जो आनंद कैसा मिलेगा, क्योंकि आनंद तो सबको चाहिए, आनंद के लिए ही सब लोग कोशिश करते हैं, दुख के लिए तो कोई कोशिश करता नहीं, सब आनंद के लिए कोशिश करते हैं। तो आनंद कैसा मिलेगा, तो हम लोग तो सुने ना, हम लोग को तो भारत लोगों को ऐसा, भारत लोगों ने सोचते हैं कि हम लोगों का अमेरिकन यूरोपियन का माफी बहुत अच्छा मकान मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, रास्ता घाट मिलेगा, बहुत विज्ञान का उन्नति होगा, तो मेरे को आनंद मिल जाएगा। लेकिन ये लेकिन सब विदेश आए हुए, अमेरिका से, स्वीडन से, ब्राजील से, ये लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं उस तरह आनंद ही नहीं। और प्रभुपाद ने बोलते थे जो बकरी होता है ना, बकरी सोचते हैं फेंस का उस पर का घास बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पर जाने से वो अच्छा नहीं है। तो भारत लोग हम लोग सोचते हैं कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाए तो आनंद मिल जाएगा, लेकिन इन लोगों को आनंद मिला नहीं। भौतिक सब कुछ सुजग है, सुविधा है, तो आनंद मिला नहीं। तो वो लोग बोलते हैं जो जीवन में वो लोग अनुभव हुआ, उधर पैसा का, ऐश्वर्य का, भौतिक सुख सुविधा का कुछ भी स्वभाव नहीं, तब भी वो लोग सुख नहीं पाते थे, तो सब छोड़ के आ गए और सुख का, आनंद का संधान मिला। किधर से संधान मिला, ना भगवत गीता से। सब लोग एक ही बात बोलते हैं, मेरा सौभाग्य के कारण भगवत गीता ग्रंथ मेरे मिल गया, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, रात में जो गीता ग्रंथ आया सब प्रश्न का उत्तर मिल गया। गीता में जो कुछ निर्देश देगा सब सुस्पष्ट है। देखो इतना दूर का लोग का पास गीता का महान संदेश पहुंच गया है, और हम लोग भारतीय है, हम लोग के पास, भारतीयों के पास महान संदेश पहुंचता नहीं। हम लोग आनंद का अनुसंधान करते हैं, आनंद के धर्म मिलेगा। तो इसलिए मैं भगवत गीता के बारे में संक्षेप में उसका शिक्षा के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि मेरे को अच्छा तरीका मालूम है। हम लोग भारतीय है, हिंदू है, होने से भी बहुत हिंदू का घर पर भगवत गीता नहीं होता है, भगवत गीता ग्रंथ नहीं होता है। जो हिंदू का घर पर गीता ग्रंथ है तो वो गीता ग्रंथ को अच्छा कपड़ा से पैक करके ठाकुर घर में रखते हैं, कभी खोलते ही नहीं। और जो भी खोलते पढ़ते हैं तो अच्छा तरीका श्लोक को मुखस्त करते हैं, मेरे को गीता मालूम है, अच्छा गीता श्लोक बोलते हैं, श्लोक में क्या लिखा है वो मालूम नहीं होता है, उसका अर्थ क्या है, अर्थ को मुखस्त करता हूं तो जीवन में उतारने के लिए कोशिश करता नहीं। ये लोगों ने भगवत गीता का शिक्षा से आनंद का संधान कैसा लोगों को मिला, गीता पढ़ने से नहीं, श्लोक मुखस्त करने से नहीं, गीता का शिक्षा को ये लोगों ने जीवन में उतारे। हम लोग हिंदू कर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन गीता को तो शिक्षा लेते नहीं, जीवन में उतारते नहीं, तो कैसा सुख मिलेगा। तो इसीलिए भगवत गीता का शिक्षा का ऊपर मैं संक्षेप में बताऊंगा, जिससे जीवन का असली आनंद का अनुभव होता है, आनंद प्राप्त होता है। लेकिन वो भगवत गीता का शिक्षा को बताने के पहले ये सुख, शांति और आनंद के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। आप लोग सब सुने हुए, तीन शब्द के सुने हुए, सुख, सुख इज बॉडीली कंफर्ट, शांति मन का शांति होता है, मेंटल पीस, और आनंद होता है। तीन शब्द का आप सुने हुए, सुख, शांति और आनंद। ये तीनों शब्द का अर्थ एक ही जैसा लगता है, सुख शांति आनंद, लेकिन नहीं, सुख शांति आनंद इसमें कुछ फर्क होता है, मैं बताऊंगा क्या फर्क है। सुख किसका सुख होता है? शरीर का सुख होता है, इसको अंग्रेजी में बॉडीली कंफर्ट बोलते हैं। सुख शरीर के लिए, शांति मन के लिए। कोई बोलता नहीं तुम्हारा शरीर शांति में है, ऐसा कोई बोलता है नहीं। शरीर सुख प्राप्त होता है, सुख दुख शरीर प्राप्त होता है, शांति अशांति मन को प्राप्त होता है, और आनंद किसको प्राप्त होता है? शरीर को आनंद प्राप्त नहीं होता है। रसगुल्ला खाने से हो बहुत खुश हो जाता है, ये आनंद नहीं, ये सुख है, समझते हैं? ये आनंद, आनंद क्या है? आनंद पाने के पहले तो मालूम होना चाहिए आनंद क्या वस्तु है, लेकिन हम लोग ने सुख को आनंद करके मानते हैं, शांति को आनंद करके मानते हैं, लेकिन आनंद का परिभाषा तो संपूर्ण दूसरा कुछ होता है। सुख तो शरीर का होता है, शांति मन का होता है, आनंद आत्मा का होता है। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शरीर मन और बुद्धि का अतिरिक्त कुछ वस्तु होता हूं, चिन्मय आत्मा होता हूं। लेकिन अज्ञान के कारण शरीर के सुख को हम लोग आनंद करके समझते हैं, मानते हैं, मन का शांति को हम लोग आनंद करके मानते हैं, लेकिन शरीर का सुख मन का शांति से आत्मा का आनंद नहीं होता है। शरीर का सुख को लोगों ने आनंद करके भूल से समझता है, और शरीर का सुख प्राप्त करने के लिए सब लोग पड़े रहे, इसका पीछे पड़े रहे, शरीर का सुख मिलेगा, शरीर का सुख किससे प्राप्त होता है? जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया, जब हमारा इंद्रिय कोई विषय का संस्पर्श में आता है उससे तरह सुख प्राप्त होता है। हमारा आंख ये इंद्रिय है, एक सुंदर रूप को दर्शन करता है थोड़ा सुख पाता है। जिह्वा एक इंद्रिय होता है, जब रसगुल्ला खाता है थोड़ा सुख प्राप्त होता है। तो कान सिनेमा गान सुनते हैं थोड़ा सुख प्राप्त होता है, ये आनंद प्राप्त नहीं होता है, ये सुख, इसका सुख बोलते हैं। और सुख क्या चीज होता है? प्रभुपाद बोलते हैं तो सुख भी नहीं मिलता है लोगों को, सुख में कैसा अज्ञान है। लोगों ने सोचता है पहले एक भूल होता है, शरीर का सुख को आत्मा का आनंद करके मानते हैं, ये भूल है, इस सही बात नहीं। तो जो सुख भी प्राप्त होता है शरीर को, वो भी सुख नहीं है, वो क्या है? प्रभुपाद ने बताता है हर्ष में हम लोग दुख ही दुख प्राप्त करते हैं। जब दुख का परिमाण थोड़ा कमी हो जाता है उसको अज्ञानी लोगों ने सुख करके मानते हैं। दुख में लोगों ने जर्जरित होता है, दुख थोड़ा कमी हो जाता है, ओ मैं कितना सुखी हूं। जैसे मैं दृष्टांत देता हूं, कोई मेरा को ऐसा जोर से चपटा के पकड़ता है तो मेरे को पीड़ा होता है, पीड़ा होता है, पीड़ा होता है, कुछ छोड़ दिया, सुख प्राप्त होता है? सुख नहीं, पीड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो पीड़ा कम हो जाता है, दुख कम हो जाता है, इसको ही लोगों ने अज्ञान के कारण सुख मानते हैं, लेकिन इस सुख ही नहीं। सुख के लिए जो कुछ हम लोग कोशिश करते हैं, लोगों ने सुख पाने के लिए सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, सुख पाने के लिए भ्रमण करने के लिए जाते हैं, कोई लोग सुख पाने के लिए प्रोस्टिट्यूट के लिए जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने इस सुख पाने के लिए नहीं जाता है, ये दुख को भूलने के लिए जाता है। लोगों ने बोलते हो बहुत मजा आ गया, बहुत आनंद आ गया, अरे तुमको तो आनंद ही मिला नहीं, सुख भी मिला नहीं, तुमको क्या प्राप्त हुआ? दुख को भूल लिया, बस उतना ही है, तीन घंटा तुम सिनेमा देखते हो तो दुख को थोड़ा भूल ही जाते हो, सुख नहीं प्राप्त होता है। सुख तो जीवन का लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि सुख तो मेरे लिए नहीं, शरीर के लिए। और जिसको भी मैं सुख करके मानता हूं वो सुख नहीं, एक दुख का थोड़ा परिमाण कम हो जाता है। ये सुख किससे प्राप्त होता है ना, इंद्रिय जो विषय का संस्पर्श में आता है उससे सुख प्राप्त होता है, उसके बाद शांति, शांति प्राप्त करना। जो लोग ने समझ पाते हैं, अरे सुख जीवन का सब कुछ नहीं, शरीर सुख में है मन में शांति नहीं तो क्या सुख, और शांत से कुछ सुखम, मन में शांति नहीं तो क्या सुख है। अरे कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो अच्छा एयर कंडीशन गाड़ी करके जाता है, अरे गरीब आदमी वो साइकिल में पेडलिंग करके जाता है। वो आदमी सोचते देखो ये मिस्टर अग्रवाल जी कितना सुख में रहते हैं, कितना आनंद में रहते हैं, अच्छा गाड़ी है, अच्छा मकान है, हमको कितना परेशानी होता है। लेकिन जो मिस्टर बिजनेसमैन जाते हैं वो तो मर्सिडीज गाड़ी में जाते हैं, देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनका मन में चिंता है इनकम टैक्स लोग हमको पकड़ेंगे, सेल टैक्स लोग पकड़ेंगे, ये दुर्गा पूजा आ गया 1,00,000 रुपया क्लब का लोग, मन में कितना अशांति मरता है। अच्छा मकान है, सुंदर पत्नी है, सब कुछ अच्छा है, फिर मन में शांति नहीं है। अशांत से कुछ सुखम, सोफा सेट में बैठा है, अच्छा मकान है, अच्छा डनलप गद्दी है सोने के लिए, लेकिन इतना चिंता है रात को नींद नहीं आता है, तो क्या सुख मिलेगा। गांव का लोगों का डनलप गद्दी क्या है, तो घर में सोने के लिए जगह नहीं, वो रास्ता में सोते हैं, लेकिन अच्छा से सो जाता है। कितना मच्छर देखा उनका गांव का है शरीर का ऊपर, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। अरे एयर कंडीशन घर मकान है, अच्छा डनलप गद्दी है, नींद नहीं आता है, शांति नहीं मन में, अशांत से कुछ सुख, समझते हैं। दैहिक सुख जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। जो लोग इसको समझ पाते हैं वो मानसिक शांति के पीछे छूटे हुए, मेरा जीवन शांति चाहिए, शांति का अन्वेषण करते हैं। लेकिन शांति किस लिए, तुम्हारे लिए शांति नहीं, ये तो मन के लिए। तुम तो मन नहीं हो, तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो, जैसा तुम तुम्हारा मन नहीं हो। शरीर तुम्हारा, तुम्हारा एक भौतिक शरीर स्थूल शरीर और मन एक सूक्ष्म शरीर, ये तो तुम्हारा आवरण है। ठीक है, मन को शांति चाहिए। मैं कपड़ा पहनता हूं, मेरे को कपड़ा परिष्कार कपड़ा पहनने से मेरे को अच्छा लगता है, मन को शांति चाहिए। लेकिन कपड़ा परिष्कार होने से सब कुछ नहीं होता है, तो इसे माफे मन का शांति चाहिए। लोगों ने थोड़ा थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो लोग समझ गए सिर्फ भौतिक वस्तु प्राप्त करने से, दैहिक सुख प्राप्त करने से सब कुछ नहीं प्राप्त होता है, पर मन में शांति चाहिए, तो शांति और उन लोग छूटते हैं। शांति किससे मिलता है, अज्ञानियों को, अज्ञानियों अशांति में रहते हैं। जो लोग यथार्थ ज्ञान होता है वो लोग शांति में रहते हैं। जो लोग को मालूम है सुख दुख आएगा ही, वो लोग अशांति प्राप्त नहीं होता है। जो लोगों ने इस भौतिक जगत का स्वरूप को मालूम है वो लोग अशांति में नहीं रहता है। जो लोगों को गुण का प्रभाव के बारे में मालूम है वो लोग अशांति नहीं रहता है। तो ज्ञान का संस्पर्श में आने से लोग शांति प्राप्त होता है। इंद्रिय जो विषय का संस्पर्श में आता है सुख पाते हैं लोगों ने, मन ज्ञान का संस्पर्श में आता है तो लोग शांति प्राप्त होता है। लेकिन सुख शांति जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य इससे और उन्नत होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य आनंद, जीवन का लक्ष्य प्रसन्नता। ये आनंद किस लिए, आनंद आत्मा के लिए, आनंद मेरा लिए, मेरे को आनंद चाहिए। सुख मेरे लिए यथेष्ट नहीं है, दैहिक सुख मेरे लिए यथेष्ट नहीं है, मानसिक शांति मन का शांति मेरे लिए यथेष्ट नहीं है, मेरा आत्मा का आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो वो कैसा प्राप्त होगा? जैसा सुख और शांति प्राप्त हुआ था ऐसा ही बच्चे को ठीक से बात बताओ। तो जैसा ये सारी इंद्रिय विषय का संस्पर्श माने से सुख प्राप्त होता है, मन ज्ञान का संस्पर्श माने से शांति प्राप्त होता है, ये आत्मा जब भगवान का संस्पर्श में आता है, आत्मा जब परमात्मा के संस्पर्श में आता है, तब उसका आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए भागवत में बताया सबाई पुंसा परो धर्म जत भक्ति अधक्षज, अहत्व की अप्रत्यता जज आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये बहुत जरूरी समझना, बहुत मूल्यवान वजनदार बात है। जज आत्मा सुप्रसिद्ध बताया था क्या, आत्मा का प्रसन्नता, आत्मा का सुख नहीं, आत्मा का शांति नहीं, आत्मा का प्रसन्नता किससे प्राप्त होता है? ना स्वाभाविक पुंसा परो धर्म, जीवन का परम धर्म क्या है इसको जानकारी करना चाहिए। परम धर्म का जीवन में धर्म का आचरण करना चाहिए। हमारा धर्म है और परम धर्म है, पिता माता का सेवा करा धर्म है, देवताओं का सेवा करा धर्म है, मुनि ऋषियों का सेवा करा धर्म है, दुखी लोगों का सेवा करा धर्म है, ये सब धर्म है। धर्म करने से सुख और शांति प्राप्त होता है, लेकिन परम धर्म क्या है? भगवान का सेवा करना। सबाई पुंसा परो धर्म जत भक्ति अध्यक्ष, भगवान का सेवा करना जिसका परम धर्म होता है। तो भगवान का संस्पर्श माने से जीव को आनंद प्राप्त होता है, उसी आनंद में आनंद है, शांति है और सुख भी है, सब कुछ है। सुख के लिए जीवन में प्रयास करना जरूरत नहीं, कर्म का अनुसार सुख मिलेगा, सुख शांति मिलेगा। जैसे किसी को सुख मिलेगा जितना दुख भी मिलेगा उतना। ये भौतिक जगत जैसा साइकिल का चक्का होता है ना, ऐसा ही स्पोक होता है, कोई नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। आप आज दुखी हो तो कल सुखी बनेंगे, साइकिल के चक्कर का स्पोक ऊपर जाएगा। और जो लोग आज बहुत सुखी है कल दुखी बनेंगे, भगवान कृष्ण ने गीता ने बताया। इसलिए भगवान कृष्ण ने बताते हैं दुखे से अनुद्विग्न मनो सुखे से विगत स्प्रिय, जब तुम दुख में हो तो उसमें से उद्विग्न होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुमको फिर बाद में सुख मिलेगा। और जो लोग सुखी में हो, कितना सुख में, सब भूल जाते हैं, उद्वेलित हो जाता है। अरे तुम्हारे लिए दुख दरवाजा पर ठहरा है तुम्हारा, वो भूल जाता है क्यों? सुख दुख में विमर्श होना और बहुत उद्वेलित होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख पर दुख आएगा, दुख पर सुख आएगा। शांति अशांति सुख दुख इस जीवन में मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तुमको चेष्टा करना नहीं पड़ेगा। दुख के लिए कोई चेष्टा करता नहीं तभी आता है ना, कोई दुख चाहता नहीं, दुख के लिए कोई कोशिश करता नहीं तब तो दुख आता है, सुख भी वैसे आएगा। सुख शांति दुख अशांति जीवन में आएगा जाएगा, लेकिन आनंद है वो जीवन का लक्ष्य होता है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान इस आनंद प्राप्त करने का उपाय बताया, तो मैं संक्षेप में बताऊंगा आप लोगों को गीता में क्या शिक्षा दिया गया कृष्ण अर्जुन को। हाँ, क्या शिक्षा दी? लोगों ने तो ऐसा बोलते हैं, ओ गीता पढ़ना नहीं, गीता पढ़ने से बाबा जी बन जाएंगे। अरे गीता शिक्षा अर्जुन को दिया गया, गीता शिक्षा प्राप्त करने के बाद अर्जुन बाबा जी बन गए, वो सन्यासी बन गए थे? नहीं नहीं, गीता शिक्षा पाने से पहले अर्जुन ने बताते थे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा करके जीविका निर्वाह करूंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा, ऐसे बताते थे। वो क्षत्रिय है, उनका कर्तव्य युद्ध करना। लेकिन कृष्ण भगवान गीता ज्ञान को प्राप्त करके उनका कर्तव्य कर्म में बहुत मन लगा दिया। एक गीता का पहला शिक्षा होता है, तुम्हारा कर्तव्य कर्म ठीक से करो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म ठीक से करो, कर्तव्य कर्म करने से तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। ये पहला नंबर शिक्षा होता है कर्तव्य कर्म करना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चिन्मय आत्मा हूं, ये ज्ञान दिए भगवान श्री कृष्ण सांख्य जो चैप्टर टू द्वितीय अध्याय में दिए। तो उसके बारे में कृष्ण क्या बोलते हैं, पहले कृष्ण बताए तुम तुम्हारा कर्तव्य कर्म करो, तुम जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, ये एक तरीके का उपदेश दिए। लेकिन कृष्ण ने फिर सोचने लगे, मैं तो लोगों को बता दे तुम्हारा कर्तव्य कर्म करो सुख में रहेंगे, लेकिन कर्तव्य कर्म सिर्फ करने से वो कर्म तो कर्म बंधन में लोगों को फंसा देंगे। जो कर्तव्य कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, कर्तव्य कर्म करना, पुण्य कर्म करना, सुकर्म करना, धर्म कर्म करना, ये कृष्ण भगवान बताए। फिर कृष्ण भगवान सोचने लगे, अरे ये तो लोगों कर्म बंधन में फंसा देगा, सुकर्म करवे करके कर्तव्य कर्म करके स्वर्ग लोक जाएंगे, धन संपत्ति प्राप्त होंगे, सुख प्राप्त होंगे, कर्म बंधन में फंसा देगा, तो इससे लोगों को छुटकर कैसा मिलेगा। तो फिर नेक्स्ट बताया, तुम कर्तव्य कर्म करो लेकिन कर्म बंधन से छुटकारी प्राप्त करने के लिए कर्म का फल मेरे को अर्पण कर दो। जत करोषि जत अस्नासि जत जुहसि ददासि जत जत तपस्सि कौन्तेय तत कुरुष मदर्पणम्। बहुत सरल भाषा में कृष्ण ने बताते हैं, ओ अर्जुन तुम जो कुछ करते हो, जत करोषि जो कुछ खाते हो, जत अस्नासि जो कुछ पूजा करते हो, जो कुछ दान करते हो, जब ददासी जो कुछ तपस्या करते हो, वो मेरे लिए अर्पण करो। इसलिए मेरे लिए अर्पण करने से शुभा शुभैर फलैर मुक्त्वा, तुमको शुभ और अशुभ कर्म फल से छुटकारी प्राप्त मिलेगा, कर्म फल से छुटकारी मिलेगा, पाप और पुण्य फल तुमको भोगने नहीं पड़ेगा। इसको निष्काम कर्म बोलते हैं। निष्काम कर्म का मतलब नहीं कुछ कर्म नहीं करना, निष्काम कर्म का मतलब होता है तुम अच्छे से कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो, लेकिन कर्तव्य कर्म का फल भगवान को सौंप दो, उसे तुमको कर्म फल का भागीदारी होने नहीं पड़ेगा। इसको बोलते कर्म कौशल, कैसे कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन में नहीं आएंगे। इसीलिए कथाकरण बोलते छोड़ना नहीं जोड़ना है, कर्म बंधन से छुटकारी कर्म को छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होता है, कर्म बंधन से छुटकारी कर्म का फल भगवान के साथ जोड़ने से ही होता है। जत करो से जो कुछ कर्म करते हो भगवान को अर्पण करो। तो लोगों ने पूछा कैसे भगवान को अर्पण करूंगा, तो बहुत सरल है ना, तुम जो कुछ खाते हो भगवान का निवेदन करो, भगवान को भोग चढ़ाओ, भगवान का प्रसाद खाओ, क्या प्रॉब्लम है। अरे भगवान का जो भोग चढ़ाते हो भगवान के हाफ खत्म कर देते हैं, तो अपना सोचते अरे मैं गरीब हूं भगवान तो हाफ ले लेते हैं मैं कैसा संसार चलेगा। अरे नहीं, भगवान इतना कृपालु होते हैं भगवान सब खा लेते हैं, फिर उनका योग शक्ति के द्वारा सब प्रसाद तुमको देते हैं, पेट भर के खाओ, क्या प्रॉब्लम है। अरे भगवान तो सब दिए हुए, तो उनको थोड़ा भोग चढ़ के खाने से क्या समस्या होता है। भगवान इसीलिए बोलते तुम चोर हो, जो भगवान को भोग चढ़ाते नहीं खाते हैं वो चोर है बोलते हैं। जग सिस्टर सिनसंत मुच्चंत सर्वकली भी सही, लोगों ने भगवान को दिया हुआ चावल दाल सब्जी कौन दिया है, सब सरकार ने दिया, बनाया सरकार ने बनाया, ये वैज्ञानिकों ने बनाया नहीं, भगवान ने दिया हुआ, उनको थोड़ा समर्पण नहीं करना। तो तुम पाप खाते हो भाव, तुम पाप खाते हो, जो भगवान का भोग चढ़ाते बेगर खाते हैं ना, जगन शिष्ट सिन्हसंत मुच्चंत सर्वकृ भी सही, तुम मोटा मोटा पाप ही खाते हो। तो जो खाना है तो भगवान को अर्पण करो, क्या प्रॉब्लम है। जद जुहसी तत्कुरुष्व अर्पणम, तुमको पूजा अर्चना करने की इच्छा आता है ना, चाहते हो तुम मंत्रियों का पूजा अर्चना करते हो, भूत प्रेत को पूजा अर्चना करते हो, देवताओं का पूजा अर्चना करते हो, नहीं जरूरत नहीं, मेरे को पूजा करो। जब जो है तत्कुरुष मतलब जितना सारी पूजा होता है अर्चना होता है मेरे को अर्पण कर दो। तुमको दान देने के लिए चाहते हैं, लोगों ने दान देते हैं, दान देने से मेरा पुण्य हो जाएगा, पुण्य होने से मैं सुख में रहूंगा, पुण्य होने से मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन गीता में कृष्ण बोलते हाँ तुम स्वर्ग जाओगे, लेकिन खिन्न पुण्य मर्त्यलोक विसंति, पुण्य खत्म हो जाने से फिर तुमको मर्त्यलोक में आने पड़ेगा। ऐसा तुमको पुनरपि जन्मम पुनर्पि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, संसार चक्र में घूमने पड़ेगा। कभु स्वर्ग कभु नरक कभु राजा कभु प्रजा कभु कीट क्षुद्र, एरू ब्रह्मांड भ्रमण भ्रमण करने पड़ेगा। तो इसलिए तुम जो दान करते हो वो दान का फल प्राप्ति के लिए दान मत करो, मेरा पुण्य होगा मैं स्वर्ग जाऊंगा ये नहीं। तुम दान करते हो तो मेरे लिए दान करो, मन में दान करने की इच्छा होता है तो भगवान को लिए दान करो। लोगों ने दरिद्र लोग को खिलाते हैं, हमारा हिंदू समाज में बोलते मैं दरिद्र नारायण का सेवा करता हूं। अरे इतना अहंकारी तुम हो, जो लक्ष्मीपति नारायण दरिद्र बन गए और तुम्हारा तुम इतना धनी बन गए, तुम खिचड़ी खिला के नारायण सेवा करते हो। ये पाषंडी बुद्धि होता है, दरिद्र नारायण शब्द व्यवहार करना ये अपराध है। दरिद्र तुमको दरिद्रों का सेवा करना है तो उनको प्रसाद खिलाओ, ऐसा खाना खिलाओ मत। खाना खिलाते हैं ऐसे तुमको भी पाप लगेगा, मालूम है कैसा? कोई दरिद्र लोग खाना पता है, खाना खाएगा, खाना खाके जो कुछ दुष्कर्म करेगा, दुष्कर्म करने का फल जो खिलाते हैं उनको मिलेगा। शास्त्र में बताते हैं लोगों ने हॉस्पिटल बनाते हैं, कोई अपराधी दुष्कर्मकारी दुष्कर्म करने के कारण हाथ कट जाता है, कुछ शरीर बिगड़ जाता है, तो वो लोगों आके हॉस्पिटल में शरीर को सुधार के फिर जो पाप कर्म करते हैं, जो लोगों ने हॉस्पिटल बनाता है उनको कर्म का फल लेने पड़ेगा। और हॉस्पिटल बनाने वाला सोचते हो मैं कितना पुण्य कर्म करता हूं, नहीं तुम पाप को भी लेते हो, तुम्हारा कर्म से लोगों ने अच्छा बनते हैं, देखे फिर चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डर केस करते हैं, ये कर्म फल। भगवान कृष्ण बोलते हैं कर्मणा गहना गति। इसीलिए दान देना है तो किधर दान देना है, किसने बताया गीता में? रजोगुण का दान होता है, तमोगुण का दान होता है, सत्वगुण का दान होता है, तीन तरीके का दान होता है। लोगों ने जैसा दान तक मैं बड़ा दानी बन गया, नहीं, त्रिगुणातीत दान कैसे, निर्गुण दान होता है, उसके बारे में हम लोग जानना चाहिए। तपस्या से तपस्या करते हैं, तपस्या का मतलब क्या है? जानबूझ से कुछ कष्ट करना, कष्ट उठाना, हमारा बिजनेस के लिए कष्ट करता है, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए कितना कष्ट करता है। मैं तो मायापुर से आया हूं, मेरा मायापुर कृष्णनगर से नौकरी करने के लिए 3 घंटा ट्रेन में बैठ के लोगों ने जाता है, सुबह सुबह बहुत 4 बजे जाग जाता है, तो सप्ताह हफ्ता भर का परिश्रम करता है, जब संडे को आता है 8-9 बजे तक सोते हैं। अरे भगवान के लिए तुम 4 बजे उठाओ उस दिन, फिर भगवान का भजन करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, क्या प्रॉब्लम है? ये तपस्या भगवान के लिए तपस्या करो, भगवान के लिए सुबह जागो, भगवान के लिए व्रत करो, भगवान के लिए उपवास करो, तो तपस्या हमको शुद्ध करेगा। इसको बोलते हैं कृष्ण कर्मार्पण, निष्काम कर्म। पहले बताए कर्तव्य कर्म करो, फिर बताए निष्काम कर्म करो, कर्म का फल मेरे को अर्पण करो। तो इसके बारे में बोलते हैं तो इस सबसे छुटकारी प्राप्त है, मोक्ष को प्राप्त हो। अंत में बोलते हैं शुद्ध भक्ति करो, शुद्ध भक्ति से कल्याण होता है, पाने के लिए नहीं, भगवान का पीछे पाने के लिए मत पढ़ो, भक्ति करो भगवान से लेने के लिए नहीं, भक्ति करो भगवान को देने के लिए, वो भक्ति को प्रेम भक्ति बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु आगे जो भक्ति के बारे में बताए वो कर्म के बारे में नहीं बताए, ज्ञान के बारे में नहीं बताए, योग के बारे में नहीं बताए, कर्म का द्वारा ज्ञान का द्वारा योग का द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान ने बताता है भक्त्यमां अभिजानाति, भक्त ही मेरे को समझ पाता है, इसीलिए सबको मालूम है भक्त वत्सल भगवान होता है। कभी सुने हुए आप लोग ज्ञानी वत्सल भगवान, योगी वत्सल भगवान, कभी सुने हुए कर्मी वत्सल भगवान, नहीं कोई भी सुना नहीं, एक गांव का बुढ़ी को पूछो वो भी बता पाएगा आपको, भक्तेर भगवान, ज्ञानी भगवान नहीं होता है, कर्मी का भगवान नहीं होता है, योगी का भगवान नहीं होता है, सुकर्म करके पुण्य कर्म स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ध्यान से परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति से भगवान का संपर्क होता है। तो हमारे जीवन में जो कुछ करेंगे ना वो तो भोग हो जाएगा, पाप करो या पुण्य करो इसका फल हमको भोग होता है, लेकिन भगवान का संपर्क तो जो कुछ कर्म का हम लोग करते हैं वो जन्म जन्मांतर में रहते हैं और नष्ट नहीं होता है। भगवत गीता ने भगवान कृष्ण बताए जब मेरे लिए थोड़ा कोई कर करेगा तो महान विपद से उसको छुटकारा प्राप्त होता है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्, थोड़ा से भी मेरे लिए कोई करता है तो महान विपद से छुटकारा प्राप्त होता है। इसके बारे में मैं पुराण का एक वर्णन करके मेरा कथा का विश्राम दूंगा। पुराण में ऐसे वर्णन आता है जो भक्ति कितना श्रेष्ठ महान होता है, कर्म से ज्ञान से ध्यान से भक्ति कितना श्रेष्ठ होता है। तो एक जमींदार लोग था, बहुत धनी आदमी था, तो धन होने से लोगों ने क्या करते हैं तो उड़ाते हैं, इधर शराब पीते हैं, कोई प्रोस्टिट्यूट लोग जिसको मालूम नहीं धन को कैसा प्रयोग करना है, खर्च करना है, इधर उधर खर्च करते, बहुत एडिक्टेड था, बहुत बेस्यासक्त था, बेस्या का संग बहुत करता था। अब बेस्या का संग करते हुए करते हुए सब पैसा उड़ा दिया, सब पैसा खत्म हो गया, तो अंत में उनके पास एक रुपया है बस, एक रुपया। तो एक रुपया जाके कोई बेस्या के पास जाएगा और बेस्या तो भागा देगा, उनको तो पैसा चाहिए। तो ये लोगों ने सोचा मैं एक रुपया देके वो तीन टो गुलाब फूल खरीद किया, गुलाब गुलाब का फूल खरीद किया, वो सोचा मैं तीन गुलाब फूल बेस्या को दूंगा, उनके मैं बताऊंगा सारा जीवन भर के तुमको सब पैसा तुम्हारे लिए खर्च कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं, एक रुपया था, एक रुपया में मैं तीन गुलाब तुम्हारे लिए आय देने के लिए, तुम इसको लेके खुश हो और मेरे को थोड़ा भोग करने के लिए सुजग दो। तो तीन गुलाब फूल लेके वो हाथ में पकड़ के जाता था, तो बीच में जो रास्ता जाता था एक कैनाल था, कैनाल वो पानी जाता था कैनाल में, वो ब्रिज नहीं था, तो कैनाल को जंप करके उस पर जाना था उसको। तो तीन गुलाब फूल को पकड़ के जब जंप करता था तो एक गुलाब फूल पानी में गिर गया, तो बहुत हताशा हो गया, तो गुलाब फूल को पकड़ने के लिए कोशिश किया पानी में जाके, लेकिन गुलाब फूल हाँ चला गया, मिला नहीं। तो चला गया तो वो बोला गोविंदा स्वाहा, बंगाल में ऐसा बात होता है तो औरत लोगों ने जब कुछ पॉप राइस होता है, पॉप राइस क्या मुरमुरा होता है, कुछ ऐसा कुला में ऐसा करते हैं ना, तो कुछ मुरमुरा उठ जाता है तो गोविंदा स्वाहा, ये तो मिला मैंने को मिला क्या नहीं, तो गोविंदा स्वाहा भगवान को हो गया। तो इसको तो गुलाब फूल गिर गया तो मेरे को मैं तो मेरे को प्राप्त नहीं कर, ठीक है गोविंदा स्वाहा, तो गोविंदा स्वाहा करके वो बेस्या के पास गया और बेस्या को बोला देखो मेरे पास एक रुपया था, तुम्हारे लिए मैं तीन गुलाब लेकर आया, लेकिन उससे एक गोविंदा स्वा हो गया, तुम दो लगे खुश रहो। तो इन लोगों ने सारा जीवन भर को ऐसा पाप करता था, कुछ भी पुण्य कर्म किया नहीं। फिर अंत में जब मृत्यु का समय आ गया तो कौन आएगा? विष्णु तो आएगा लेने के लिए नहीं, तो यमदूत ना आ गए। तो यमदूत ने उसको अच्छे से पकड़ के यमराज के पास ले गए। तो यमराज ने पूछा, चित्रगुप्त इसका नथी खोलो, फाइल खोलो, क्या पाप पुण्य क्या, उसका क्या गति होगा? तो चित्रगुप्त ने बताया, यमराज जी इन्हें जो पाप किया ये तो नरक वास करेगा, इसका नरक वास होगा। तो नरक भजन पड़ेगा, नित्य नरक वास होगा। तो जब नरक के लिए जाने के लिए सब व्यस्त होता था, बोले नहीं नहीं रोको रोको रोको, ये कुछ पुण्य किया। वो जो पुण्य किया 10 मिनट स्वर्ग जाकर पाएगा, 10 मिनट के लिए बस स्वर्ग भोग करेगा। तो यमराज ने पूछा, अच्छा तुम बताओ पहले 10 मिनट के लिए स्वर्ग जाएंगे बाद में नरक जाएंगे, ना पहले नरक भोग करके स्वर्ग जाएंगे? ये तो भोगी आदमी है। इन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे को पहले स्वर्ग जाने दो, देखो क्या स्वर्ग में है, फिर नरक जाऊंगा, पहले थोड़ा भोग करने दो। तो उनके लिए चारियट रथ प्रस्तुत होता था। तो ये पापी लोगों ने जाके चित्रगुप्त को पूछा, अरे चित्रगुप्त जी थोड़ा मेरा नथी खोल के देखे तो मैं क्या पुण्य क्या था, 10 मिनट के लिए मेरे को स्वर्ग भेजते हो? मेरे तो ऐसे कुछ भी याद नहीं आता है, मैं कभी जीवन में कुछ भी पुण्य किया, तो कुछ भी पुण्य किया नहीं, पाप ही पाप किया, तो क्यों मेरे को 10 मिनट तुम स्वर्ग भेजते हो? तो चित्रगुप्त ने बताया, ये देखो तुम एक बार वेश्यालय जाते थे, तुम्हारे हाथ से एक गुलाब का फूल गिर गया तो तुम गोविंदा सुहा बोल दिया, जान अनजान से गोविंदा सुहा बोल दिया, इसलिए 10 मिनट स्वर्ग जाने पड़ेगा। वो तो बहुत अच्छा बात है। तो उनके लिए अच्छा एरोप्लेन आ गया, तो एरोप्लेन में चढ़ कर गए ये लोग, भद्र लोग ने स्वर्ग गेट पर पहुंच गए। तो स्वर्ग का गेट पर जो पहुंच गए, स्वर्गवासी आ गए, ओ वेलकम वेलकम टू हेवन, स्वागत सुस्वागत, आ जाइए पधारिए पधारिए स्वर्ग के लिए, हाँ स्वर्ग में पधारिए। जैसे कोई रेस्टोरेंट पर आप लोग जाते हैं ना, रेस्टोरेंट का बॉय आता है ना, मेन्यू लेके, क्या मेन्यू चाहिए आप बताइए, तो मेन्यू लेके आगे क्या चाहिए, रंभा मेनका अप्सरा है नंदन कानन, क्या चाहिए तुमको? तो ये लोगों ने, बहुत बड़ा गेट है स्वर्ग का, तो दरवाजे पर ठहरता है, देखते अंदर में बहुत बड़ा गुलाब का बगीचा है। तो ये बताया तो ये सोचता है क्या मांगूंगा। तो स्वर्गवासियों ने पूछता, अरे जल्दी बताओ 10 मिनट टाइम खत्म हो जाता है, जल्दी बताओ क्या तुमको चाहिए स्वर्ग में? तो सोचा सोचा बोला, मेरे को एक तरवाल चाहिए। तरवाल चाहिए? अरे तरवाल क्या करेंगे तुम? नहीं मेरे को तरवाल ही चाहिए, एक दो तरवाल दे दीजिए। तो स्वर्ग लोग विस्मित हो गए, ये स्वर्ग आया तरवाल क्यों मांगते हैं? ठीक है तुमको इच्छा है वासना है, तो दो तरवाल उनके हाथ पर दे दिए। तो ये पापी लोग अंदर घुसा, और उधर तक बहुत बड़ा गुलाब का बगीचा है, तो गुलाब का बगीचा पर अंदर घुसा, उस दो तरवाल लेके जाके सब गुलाब फूल को काट के गोविंदा सुहा गोपालाय सुहा गोविंदा सुहा गोपालाय सुहा करके, तो 10 मिनट में हजार हजार सब गुलाब फूल को गोविंदा सुहा करने शुरू किया। तो क्या शिक्षा मिला? तो ये लोगों ने समझ गया जो गोविंदा सुहा में एक गुलाब फूल गोविंदा सुहा किया तो 10 मिनट मिल गया। तो अभी 10 मिनट समय मिला ना, इसको दूसरा कुछ काम में नहीं लगाना, सिर्फ गोविंदा सुहा। हमारा जिंदगी क्या है? 10 मिनट का जिंदगी है, 60, 70, 80 ईयर्स क्या है? कुछ भी नहीं। हमको एक मौका मिला, हम सब नरकवासी है, ये लोग नरकगामी था, लेकिन एक मौका ने भगवान दिए, ये मनुष्य शरीर दे दिए, 10 मिनट के लिए मनुष्य शरीर दिए। तो इसको हम लोग बुद्धिमान होना चाहिए, इस शरीर को प्राप्त करके दूसरा कुछ काम में नहीं लगाना, इस शरीर को पुत्र परिजन आत्मीय स्त्री देश का में पूरा नहीं देना चाहिए, इस शरीर को भगवान के सेवा, मनुष्य जीवन को भगवान का सेवा में लगाना चाहिए, गोविंदा सुहा, 10 मिनट 10 मिनट फुल्ली गोविंदा सुहा। और क्या हुआ न, इतना स्वल्पमपेश धर्म से त्रायते महत्व है, इतना छोटा सा भक्ति किया, जान अनजान से भी कर दिया, तभी उनका इतना फल मिला। कोई भक्ति से प्रेम से भगवान को भक्ति करेगा था, कितना फल नहीं मिलेगा। तो ये भक्ति का पराकाष्ठा। तो लोगों ने पूछा भक्ति क्या चीज है, कैसा भक्ति करेंगे, बहुत सिंपल है। तो भगवान का किताब पढ़ो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान का प्रसाद पाओ और आपका कर्तव्य कर्म करो। नामाश्रय करी जतने तुम्हें था कहो आपन काज। और कलयुग में भक्ति करने का श्रेष्ठ उपाय होता है भगवान का नाम कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सिंपल सरल है, कोई कीमत नहीं इसका, कोई पैसा लगता नहीं, कोई ताकत जरूरत नहीं, खुद सिंपल प्रोसेस। लोगों ने इस सिंपल प्रोसेस को मानते नहीं, बहुत बड़ा बड़ा अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, और भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो भगवत गीता में शास्त्र में बताए तो भक्ति श्रेष्ठ होता है, और भक्ति से प्रेम भक्ति श्रेष्ठ होता है। भक्ति प्रेम भक्ति में क्या अंतर है, लोगों ने भक्ति करते हैं भगवान से लेने के लिए, अब प्रेम भक्ति करते हैं भगवान को देने के लिए, इसको प्रेम भक्ति बोलते हैं। और इस प्रेम भक्ति लोगों को प्राप्त होता है भगवान का नाम कीर्तन करने से। चैतन्य महाप्रभु ने इस सिंपल प्रोसेस बताए, कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म का फल भगवान को अर्पण करके भगवान का नाम करते रहो, देखो जीवन में क्या प्राप्त होता है। ब्रह्मार दुर्लभ वस्तु, ब्रह्मा शिव को भी जो प्राप्त नहीं हो सकता दुर्लभ होता है, वो भी आसानी से प्राप्त होता है मनुष्य को। वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति का ये पंथा दिया गया। कृष्ण संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है संसार को मत छोड़ो, परिवार को मत छोड़ो, कर्तव्य कर्म को मत छोड़ो, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के संसार करो, वो वैकुंठ बन जाएगी। संसार मत छोड़, क्या छोड़ना ना, दुष्कर्म का परित्याग करो, छड़ी अनाचार कुकर्म पाप कर्म से दूर रहो, और जीव के प्रति दया करो, हर जीवों को दया करो और कृष्ण नाम करो, ये परम धर्म होता है। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन यहूदी सब धर्म के बारे में बताते हैं, लेकिन हम लोग जो धर्म के बारे में बताते हैं गीता भागवत जो धर्म के बारे में बताते हैं, वो मुसलमान क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम नहीं, वो प्रेम धर्म के बारे में बताता है, वो सनातन धर्म के बारे में बताता है, सब मनुष्यों के लिए, सब जीवों का कल्याण के लिए। ये भगवत प्रेम धर्म है, जो भगवान को प्रेम करता है, भगवान सृष्टि सबको प्रेम करता है, सबको प्यार करता है, प्रेम से आनंद आता है, प्रेम से आनंद आता है, प्रेम से प्रसन्नता आता है। तो प्रसन्नता आनंद कैसे प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा प्रेम से, घृणा से नहीं। घृणा करने से आनंद नहीं आता है, प्रेम करने से आनंद आता है। भगवान को प्रेम करो और भगवान का सृष्टि को सबको प्रेम करो, सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु जानवर कीट कीड़ा पतंग सबको प्रेम करो, इसको प्रेम धर्म बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रेम धर्म को प्रवर्तन किया। तो आप लोग इस संध्या में उपस्थित होकर ध्यान पूर्वक श्रवण किए, कीर्तन भी किए, इसीलिए हम लोग इस कलकाओं से आप लोग को अशेष धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करके मैं मेरा वक्तव्य को इधर विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण निताय गौ सीतानाथ प्रमानंद।